नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित राजस्थान युवा शक्ति दिवस कार्यक्रम में 485 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर लंबित पीएनजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने को कहा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में विश्वविद्यालयों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया और प्रदेश में कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना, कई क्षेत्रों में आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार, कहीं कहीं ओलावृष्टि की आशंका। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज जयपुर में राजस्थान दिवस समारोह की कड़ी में आयोजित राजस्थान युवा शक्ति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने ये बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा, कौशल विकास और खेल क्षेत्र से जुड़ी 485 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में श्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने आगामी 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि अब तक 1.25 लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की स्थापना भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुई थी, इसीलिए इस साल 19 मार्च को भव्य स्तर पर राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जल और बिजली की आपूर्ति के लिए ईआरसीपी और अन्य बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। युवाओं से स्वरोजगार और उद्यम के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह उनके साथ है।
हमारा अगर युवा खड़ा होगा तो आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत बनेगा और इसीलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में अपॉर्चुनिटी बहुत है, हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी। आप आगे आइए, सरकार पूरी तरह से आपका साथ दे रही है। हम चाहते हैं कि खेल के क्षेत्र में भी हमारे युवा आगे आए। 26-27 का बजट भी युवाओं के लिए दिया है, उसमें भी हमारा युवा आगे आएगा और हमने उसके लिए लगातार 50 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आईसीटी भी लैब स्थापित और 450 करोड़ रुपए से जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग स्थापित भी करेंगे, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं।
राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए विश्व भर में उत्साह बढ़ रहा है।
पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का आज उत्साह है। 3-3.5 वर्षों में हमने 38 विकसित देशों में द्वार खुले हैं अब भारत के निर्यातकों के लिए। भारत के लिए अपार संभावनाएं, भारत के मछुआरों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए, नए निर्यातकों के लिए, नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज के लिए नई मार्केट्स खुलेंगी बड़े रूप में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का शुरू नया अध्याय लिखा जा रहा है।
श्री गोयल ने कहा कि जब मुक्त व्यापार समझौते लागू हो जाएंगे तो भारतीय निर्यातकों के लिए व्यापक अवसर सृजित होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि सरकार वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की ओर स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। श्रीमती शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर पाइपलाइन बिछाने के लिए लंबित अनुमतियों को तत्काल मंजूरी देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही नए आवेदनों को 24 घंटे के भीतर स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है, हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं, रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नेचुरल गैस के संबंध में भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स हैं अगर वो पीएनजी पर शिफ्ट हो तो अच्छा होगा, इसी दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है।
भारतीय पोत नंदा देवी लगभग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के वडीनार बंदरगाह पर पहुंच गया है। ये पोत कतर से रवाना हुआ था और होर्मुज जल डमरू मध्य होते हुए भारत पहुंचा। कल एक और एलपीजी वाहक पोत मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा था। दोनों खेपों से देश के गैस भंडार में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि गैस आपूर्ति में फिलहाल कोई कमी नहीं है। सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और किसानों को समय पर दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन किया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले किसानों को भुगतान प्राप्त करने के लिए कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब यदि बीमा कंपनियां 21 दिनों के भीतर दावों का निपटान करने में विफल रहती है तो उन्हें भी कृषि संबंध दावों पर 12% ब्याज सहित भुगतान करना होगा। श्री चौहान ने कहा कि यदि राज्य सरकारें भी दावा प्रक्रिया में देरी करती हैं तो उन्हें किसानों को 12% ब्याज देना होगा। उन्होंने कहा कि किसान दावा निपटान से संबंधित अपनी शिकायतों के लिए कृषि रक्षक पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। श्री चौहान ने एकीकृत खेती और छोटे किसानों के लाभ के बारे में भी बताया।
एकीकृत खेती के अनेकों मॉडल पर काम करना शुरू किया है और कई जगह उनका डेमोंस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि छोटा किसान केवल एक फसल ना लगाए, वो खाद्यान्न भी, गेहूं चावल भी, सब्जियां भी, फल भी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन या कृषि वानिकी, अलग अलग कई क्षेत्रों में वो ध्यान दे सकता है। हमने ये प्रयत्न किए कि छोटे किसान की खेती भी लाभ का धंधा कैसे बने।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में विश्वविद्यालयों का योगदान जरूरी है। आज उदयपुर में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री बागड़े ने कहा कि नई शिक्षा नीति के जरिए पुरानी ज्ञान परम्परा को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने शोध और नवाचार पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर अपनी योजना बनानी चाहिए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉ मंजू बाघमार और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉ गौरव वल्लभ भी उपस्थित थे। अजमेर रेल मंडल सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने बताया कि मंडल पर अब तक कुल 4,476 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से अजमेर मंडल को वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लगभग 80 लाख रुपए की बिजली की बचत हुई है। मंडल पर 2.5 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का काम किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से मंडल की सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बिजली खर्च में और कमी आएगी। भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में धोखाधड़ी के मामले में एक चयनित अभ्यर्थी और एक डमी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि अभ्यर्थी ने डमी परीक्षार्थी के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण कर विज्ञान विषय के शिक्षक पद पर चयन प्राप्त किया था। वह पिछले 2 वर्षों से फरार था और उस पर 5,000 रूपये का इनाम घोषित था। वहीं डमी परीक्षार्थी पर 10,000 रूपये का इनाम था। इसने अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दी थी। प्रदेश में कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से जोधपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं बादल गरजने और आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 19 और 20 मार्च को कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका है।
18 मार्च को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसी के असर से ही 18 मार्च तक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। बीकानेर संभाग, वहीं पूर्वी राजस्थान के लिए भी बात करें तो शेखावटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग, इसके अलावा कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के भी कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज हवाओं, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना विशेष रूप से 19 और 20 मार्च को कई इलाकों में रहेगी।
विभाग के अनुसार 21 मार्च से मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इस बीच पिछले 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। पश्चिमी इलाकों में पिछले दिनों 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान अब 34 से 38 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। इसके लिए सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 27 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित राजस्थान युवा शक्ति दिवस कार्यक्रम में 485 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर लंबित पीएनजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने को कहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में विश्वविद्यालयों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। और प्रदेश में कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना, कई क्षेत्रों में आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार, कहीं कहीं ओलावृष्टि की आशंका। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।